मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 23 अक्टूबर 2015 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अविचल कुमार, जो वाजपट्टी सीतामढ़ी बिहार से हैं, रमेश सी, एजीमाला केरल से हैं, और एजीमाला केरल से ही दूसरे साथी हैं प्रतीक एम। तो अविचल, रमेश और प्रतीक, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों, मैं अतिरिक्त रूप से स्वागत करने को तैयार हूं अपने उन सभी नौजवान साथियों का जिनसे बहुत जल्दी इतवार के दिन मेरा आमने सामने उनसे मेरी भेंट होने वाली है। और एकेडमी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लगी हुई है। आप सब आएं, पूरे उत्साह के साथ आएं, अपने को खाली कर आएं, मानसिक मजबूती के साथ आएं और कुछ इस तरह बनकर आएं कि इन 15 दिन आपको पूरी तरीके से ध्यान लगाकर अपने आप को इस काम के लिए समर्पित कर देना है। फ्रेंड्स, अब कुछ बातें हैं। एक थोड़ी सी दुखद खबर है और वो ये कि एक स्टूडेंट हैं नवीन दुबे, जो गोरखपुर से हैं और अभी अक्टूबर के बैच में आने वाले थे, लेकिन उनकी दादी जी का इस बीच देहावसान हो गया तो अब वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं अपने पूरे श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से और अपनी ओर से नवीन दुबे की दादी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही ईश्वर से हम सब ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति परिवार के सभी सदस्यों को प्रदान करे। एक बार फिर से नवीन दुबे की दादी के प्रति बहुत बहुत दुखद भाव भीनी श्रद्धांजलि। फ्रेंड्स, अब कुछ सूचनाएं हैं। आज शुक्रवार है, कल सैटरडे होगा, शनिवार होगा और इसके बाद इतवार। आपको मालूम है कि शनिवार और इतवार को डेली ऑडियो नहीं आता है, लेकिन जो प्रेस की क्लिपिंग्स होती हैं वो सैटरडे को आपको एज इट इज मिलती रहेंगी। और साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्रेस की क्लिपिंग्स और योजना और कुरुक्षेत्र की क्लिपिंग्स आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे। साथ ही जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच को दिया जा रहा है, उन्हें भी संडे को स्पेशल ऑडियो गाइडेंस मिलेगा। और मैं विशेष रूप से ये बात बताना चाहूंगा कि इस बार का जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है वो जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर के ऊपर है और जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर की तैयारी पर ही आगे भी दो ऑडियो गाइडेंस उनको, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उनको मिलेंगे। यानी कि जनरल स्टडीज का जो फोर्थ पेपर है जो इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, इसके तीन स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उनको मिलेंगे। तो मित्रों, आप सब अपने मेल को एक्सेस करते रहें। ये बात मैंने स्पेशली इसलिए बताई है क्योंकि जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर और जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर के आंसर आप कैसे लिखेंगे, उन्हें कैसे समझेंगे, इसके बारे में इससे पहले आप लोगों को स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किए गए थे। तो इस बार सही मायने में बारी थी जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर की, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि अभी थर्ड पेपर को रोक दिया गया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के हैं उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उनके दिसंबर मिड से चूंकि एग्जाम मेंस के शुरू होंगे, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, फोर्थ पेपर ज्यादा चैलेंजिंग है और उसके बारे में पहले बताकर हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं, इसलिए अभी मैंने थोड़ा जंप किया है। लेकिन जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर के बारे में भी उन्हें स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया जाएगा। मित्रों, एक जो दूसरी खबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है एकेडमी की 25 अक्टूबर से क्लासेज शुरू होने वाली हैं, जिसमें पूरे देश से और कुछ बाहर से भी, विदेश से भी स्टूडेंट आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये कुंभ मेला उस तरीके का तो नहीं है, लेकिन ज्ञान का एक बौद्धिक क्षेत्र का एक मेला मुझे जरूर लगता है, और वो भी तब जब वहां उपस्थित होने वाले सारे लोग नौजवान हों। तो 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक लगातार क्लासेस होंगी, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये जो 15 दिन मेरे होते हैं, ये पूरी तरह से आने वाले मेरे स्टूडेंट्स को समर्पित होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरे लिए ये किसी भी हालत में संभव नहीं हो पाता कि मैं डेली ऑडियो प्रोवाइड कर सकूं। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और मुझे सच में ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अब मैं 8 नवंबर तक आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकूंगा। मित्रों, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मुझे ये केवल कहने की बात है, और सच में मैं आप लोगों को मिस करूंगा। लेकिन बस मेरे साथ एक अच्छी बात यह है कि उस जो खालीपन होगा, उसकी भरपाई करने के लिए मेरे पास स्टूडेंट्स के रूप में एक विशाल समुद्र मौजूद रहेगा, और इस कमी की शायद वहां भरपाई कुछ सीमा तक हो सके। वैसे जो रूटीन की कमी होती है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। तो मित्रों, ये जो मेरी अपनी सीमाएं हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि चाह कर भी मैं ऑडियो तैयार नहीं कर सकता। लेकिन हां, जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं, वो आप लोगों को जिस तरीके से अब तक मिलती रही हैं, उसी तरीके से नॉलेज सेंटर पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो आप लोग afis.com डेली यदि विजिट करते हैं, तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, और मैं समझता हूं, मेरी सलाह भी है कि आप लोगों को डेली विजिट करना भी चाहिए, उसमें कोई ढिलाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अंततः आपको इतने सारे अखबारों के इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स वहां डेली पढ़ने को मिलेंगे। सुबह जल्दी उठकर के क्लिपिंग्स तैयार करने का काम जरूर मैं हर हालत में आप लोगों को करके दूंगा। मित्रों, इसी के साथ ही एक और सूचना है। सूचना यह है कि जहां तक स्पेशल ऑडियो का सवाल है, उसके लिए जो मेरे फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल इंश्योर रहें, उन्हें इस संडे भी स्पेशल ऑडियो मिलेगा, नेक्स्ट संडे भी स्पेशल ऑडियो मिलेगा, और तीसरा संडे जो 8 नवंबर का होगा, जो क्लास का अंतिम दिन होगा, उस दिन भी उन्हें स्पेशल ऑडियो मिलेगा। और ये जो स्पेशल ऑडियो है, मैं फिर से बता दूं, जो इसका विषय है वो जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर की तैयारी करने के ऊपर है। तो इन स्पेशल ऑडियो को आप किसी भी हालत में मिस न करें। और दोस्तों, इस बीच में अगर कुछ और सूचनाएं हुई, तो जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो वहां आपको डेफिनेटली सूचनाएं मिल जाएंगी। कोशिश होगी कि 8 नवंबर के बाद, नेक्स्ट डे से ही हम इस डेली ऑडियो शुरू कर सकें। लेकिन जो कुछ भी निर्णय होगा, जो कुछ भी स्थितियां होंगी, उसके अनुकूल आप लोगों को सूचनाएं बिल्कुल मिलती रहेंगी और मिल जाएंगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस बात के प्रति माफी मांगते हुए कि मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं इस डेली ऑडियो को कंटिन्यू रख सकूं कुछ दिनों के लिए, और इससे पहले भी संभव नहीं हो पाया था। इसके बारे में चूंकि मेरा अपना अनुभव है, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑडियो में किसी तरह से उसकी क्वालिटी में फर्क आए। मैं टालने के लिहाज से तो कोई काम करता ही नहीं हूं, इसलिए मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ा है। मित्रों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में मेरा साथ देंगे। दोस्तों, अब जो थोड़ा सा वक्त बचा है हमारे फर्स्ट स्टेज वाले में, उसमें लाइफ मैनेजमेंट के बारे में अब हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी क्लास के लिए आ रहे हैं, उनको आधार बनाकर मैंने अपने सभी प्रिय श्रोताओं से अपने कुछ थॉट्स शेयर किए थे। उसके केंद्र में मित्रों यही था कि हमें अपनी जो छोटी छोटी आदतें हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए, चाहे वो हमारी बोलने की आदत हो, चाहे हमारी देखने की आदत हो, चाहे हमारे उठने बैठने की आदत हो, चाहे हमारी सोचने की आदत हो, कोई भी एक्टिविटीज क्यों ना हो, अगर हम उन्हें परफेक्ट तरीके से देखें, समझने की कोशिश करें, तो बिल्कुल पकड़ में बातें आ जाती हैं कि हमसे कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां सुधार की और ज्यादा गुंजाइश है। और ये जो पकड़ने का जो आधार है, जो तरीका है, जो सांचा और पैमाना है दोस्तों, मैं तो इसके लिए हमेशा बाइबल के उस कथन को याद कर लेता हूं। बहुत पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि जो बात आपको खुद के लिए पसंद नहीं आती, उसको उन्होंने दूसरे तरीके से कहा था, उसे ही दूसरों के लिए मत कीजिए। दैट्स ऑल। जो आप नहीं चाहते कि यह व्यवहार आपके साथ किया जाए, उसी व्यवहार को आप दूसरों के साथ मत कीजिए। सिंपल सी बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रभावशाली, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीका यही हो सकता है। क्योंकि हमें क्या पसंद नहीं आता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसमें सच पूछे तो 99% ऐसी ही चीजें होती हैं जो दूसरों को भी पसंद नहीं आते। बात बात पर हम तुनक जाएं, सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, हम भी न तुनके। सीधी सी बात, आप खुद नहीं पसंद करेंगे कि आप किसी से कोई बात छोटी सी पूछ रहे हैं और वो गुस्से में जवाब दे रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, लेकिन याद रखिए कि ये बातें तो छोटी हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। छोटी छोटी बातों से ही बड़ा बड़ापन पैदा होता है, बड़ी बातों से नहीं, क्योंकि बड़ी बातों पर तो हमारा ध्यान जाता ही है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब हमें कहीं असफलता मिलती है तब हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि यार हमारा, मैं भी उस जैसा होता, मुझे भी उस जैसी सुविधाएं मिली होती, मैं भी इतने बड़ी कोचिंग में पढ़ा होता, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा होता, मेरे पिताजी भी बहुत बड़े अफसर होते, या मेरा दिमाग ऐसा होता, मेरी मेमोरी पावर ऐसी होती, मैं इतना स्मार्ट होता, पता नहीं। हमको लगता है कि वो जो सामने वाला है, वो जो सफल हुआ है, यदि उसके जैसा हमको हमारे साथ भी होता तो हम भी सफल हो जाते, हमको लगता है। लेकिन क्या आप सोचेंगे कि जो ईरा सिंघल को जो बीमारी थी वो बीमारी हमको भी हो जाए तो हम सफल हो जाएंगे? सोचेंगे आप? नहीं सोचेंगे। दोस्तों, याद रखिए कि दूसरे के हथियार हमेशा बेहतर लगते हैं, सवाल हथियारों को बदलने का है ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सवाल है, वो ये है हथियारों का इस्तेमाल करने का, कि जो भी हथियार आपके पास हैं, आपके हाथ में हैं, उनका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। भूल जाइए जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, जो कुछ भी है, वो ईश्वर ने आपको दे दिया है, प्रकृति ने आपको दे दी है, और बहुत सोच समझ कर दिया है। हम शायद इसी के लिए डिजर्व करते थे, वो हमने हमको दे दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इसके बारे में उन्होंने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, कहीं प्रतिबंध नहीं लगाया है कि इस रास्ते की सारी लाइनें व्यस्त हैं, यहां इस इधर से रास्ता बंद है, जाना मना है। प्रकृति ने कहीं भी इस तरह का साइन बोर्ड नहीं लगा रखा है। आपके पास दिमाग है, आप देखिए कि आप उसको कितना धारदार बना सकते हैं। वहां प्रकृति ने नहीं कहा कि नहीं, आप इतने क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, बस आपकी मियाद खत्म हो गई, नो लिमिट। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं मित्रों कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, बहुत से नहीं आएंगे, बहुत से ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं, उन सबको मिलाकर के मैं ये बात कह रहा हूं कि आप में से मान लीजिए कुछ क्लास में आ रहे हैं। अब क्लास की कोई सीमा नहीं है कि आप इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। आप ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं, इस ऑडियो गाइडेंस की कोई सीमा नहीं कि आप इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। आप सोचे कि नहीं, ये वाला ऑडियो गाइडेंस न सुन करके हम उस ऑडियो गाइडेंस को सुने, आपको ठीक लगता है, चॉइस इज इन योर ओन हैंड, आप चॉइस कीजिए, बिल्कुल आप चयन कीजिए और दूसरा सुनिए, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाइए, दूसरे कॉलेज में जाइए, दूसरे गाइड, दूसरे से गाइडेंस लीजिए, वट एवर इट मे बी। लेकिन एक बार जब आप चुनते हैं तो फिर उसका पूरा फायदा उठाइए। मेरा केवल यह कहना है कि एक जो हथियार आपने अपने हाथ में ले लिया है उसका फिर पूरी तरह से उपयोग कीजिए, उसे धारदार बनाइए, देखिए कि आप उससे कितना लाभ उठा सकते हैं, कि उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो मित्रों, इन तथ्यों को समझिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि स्पेशली अब जो क्लास में स्टूडेंट आ रहे हैं इन बातों को पूरी तरह से तरजीह देंगे, और हर स्टूडेंट का इस तरह का सहयोग होगा कि कैसे हम इस क्लास के एक एक मोमेंट का, एक एक क्षण का, एक एक गतिविधियों का उपयोग अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं। और ऐसा आप करेंगे, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा कर ले जाएंगे, कुछ लोग मध्यम स्तर पर रहेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि नीचे के स्तर पर रहें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मध्यम स्तर से कोई भी स्टूडेंट नीचे हो। दोस्तों, आप सब यहां आ रहे हैं, भूल जाइए कि आप सब कहां से आ रहे हैं, अपने अतीत को ड्रॉप कर दीजिए। आप केवल ये सोचिए कि आप जा कहां रहे हैं और वहां से कहां जाएंगे। दुनिया को सिर्फ इसी बात से मतलब है कि आप जाते जाते आप पहुंचते कहां हैं, आए कहां से हैं, इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, ये प्रकृति का, समाज का बहुत क्रूरतम सिद्धांत है और इसको एक क्षण के लिए भी भुलाकर अपने आप के प्रति बेचारेपन का भाव मत लाइए। उससे कुछ भी नहीं होना है सिवाय इसके कि हम सब ऐसा सोचकर, अपने को बेचारा समझकर और अधिक कमजोर बना लेते हैं, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे सुबह सुबह भोपाल के मानस भवन में, जहां ये क्लासेस होनी है, वहां मुलाकात होगी। इससे पहले आप सब वहां पहुंच करके ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत खुली जगह है, मौसम बहुत अच्छा है, आप सब एंजॉय करेंगे और फिर हम लोगों की क्लास की शुरुआत हो जाएगी और फिर इस शुरुआत के सिलसिले को हम सब की कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। आप लोगों ने न्यूज सुनी ही होगी। सच पूछे तो कल की न्यूज में एक ही न्यूज ऐसी थी जिसको हम सिविल सर्विस के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और जिस पर हम फिलहाल कुछ बातें भी कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मालूम है कि मैं किस न्यूज के बारे में बातें करने जा रहा हूं और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं जिस न्यूज के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी होगी उसका शिलान्यास। प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और आंध्र प्रदेश अब अमरावती में अपनी नई राजधानी बनाने जा रहा है। फ्रेंड्स, अब आप देखें कि सिविल सर्विस की हम तैयारी करते कैसे हैं, वो क्या चीज होती है जो सिविल सर्विस में हमें एक तरह से आप कह लीजिए कि गाइड करती है। जनरल स्टडीज के बारे में लोगों की धारणा यही है कि वो बहुत विस्तृत है, अदृश्य है, बहुत सूक्ष्म है। विस्तृत क्या है, मतलब कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। इसके बारे में मैं इससे पहले भी आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं, लेकिन एक फिर से मौका है जब मैं इसी को दोहराना चाहूंगा ताकि वो चीज आप लोगों के दिमाग में बैठ सके, आप लोगों की दृष्टि के जाले और अधिक साफ हो सके और दिमाग ज्यादा चमकदार बन सके। क्योंकि ऐसा यदि आपने एक बार अपने आप को बना लिया तो आप देखेंगे कि तथ्यों को पकड़ने में, चीजों को समझने में आपको कितनी आसानी होने लगती है। फिर आप बड़े आराम से इन बातों को पकड़ पाएंगे कि चाहे वो अखबार हो या न्यूज हो या चैनल्स की न्यूज हो, डिस्कशंस हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी बातें हैं। केवल बातें ही नहीं, टॉपिक ही नहीं, बल्कि उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि शायद सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इस कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी भी है। मित्रों, जैसे अब अमरावती की बात आई, अब आप करेंगे क्या? अमरावती कैपिटल बनने जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रख दी। ये एक छोटी सी खबर है। हो सकता है कि जो लोअर लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर बनने जा रहा है, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाए। लेकिन जो सिविल सर्विस होगा अगर वो इस इवेंट को लेगा भी तो इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेगा। उस इवेंट को लेगा जिसकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन वो इतने सामान्य स्तर के प्रश्न नहीं पूछेगा। वो अमरावती को केंद्र में बनाए, केंद्र में रखेगा और फिर उसको केंद्र में रख करके फिर उसका ताना बाना खड़ा करेगा कि स्टूडेंट से क्या पूछा जा सकता है, और वो एक डिफरेंट तरीके से होगा। हो सकता है कि आपको सीधे सीधे वहां अमरावती दिखाई न दे, अमरावती का नाम वहां न हो, लेकिन नाम न होने के बावजूद भी उस प्रश्न के पूछे जाने के पीछे जो कारण होगा वो अमरावती होगा। जैसे मैं अब आपको एक बताऊं कि न्यूज में कुछ बातें थी भी, कुछ बातें नहीं भी हैं, राइट? कुछ बातें अखबार में भी हैं। देखिए, ये जो न्यूज होती है या अखबार के जो न्यू अखबारों में जो छपी हुई न्यूज होती है जिसको हम लोग जनरली स्टोरीज कहते हैं, या उस पर दिया गया कोई आर्टिकल होता है या एडिटोरियल कमेंट होता है या उसको मुद्दा बना करके किए गए डिस्कशंस होते हैं, ये केवल अलग अलग चैनल हैं और अलग अलग होने के बावजूद ये अलग नहीं है। ये सब एक दूसरे को ये स्थापन नहीं करते, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बेसिकली सप्लीमेंट है। एक दूसरे को एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करके आपके सामने एक कंप्लीट इमेज, एक कंप्लीट फिगर, तस्वीर पेश करते हैं। आप लोगों ने न्यूज में सुना, डेफिनेटली आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा। तो उन सबको करने के बाद, पढ़ने के बाद, अमरावती के बारे में जो फिलहाल जो धारणाएं बन रही हैं वो बन रही है कि ये कहां है, कृष्णा नदी के तट पर है। एक आपको धारणा बन गई कि कृष्णा नदी के तट पर है, गुंटूर जिले में है, लगभग लगभग अभी 5.5-6 लाख की आबादी है। ये कुछ सामान्य सी बातें आपको पता लग गई, ये वहां का ज्योग्राफिकल सिचुएशन हो गई। अब यदि आप सिविल सर्विस की सही में तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप जो सातवाहन शासक हुए हैं, वो जो वंश है उनका नाम, डायनेस्टी जो है वो सातवाहन थे। अमरावती पर सातवाहन शासकों ने राज्य किया है, तो आप थोड़ा सा सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ लें। आपको कोई याद नहीं करना है, केवल सातवाहन शासकों के बारे में ये पढ़ें। उनकी राजधानी अमरावती थी, तो राजधानी अमरावती थी, अमरावती में उन्होंने क्या क्या किया, कला के क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं, पेंटिंग के क्षेत्र में काम किए, खासकर मंदिर निर्माण की कलाओं में उन्होंने काम किए हैं, कौन से मंदिर बनवाए, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो वास्तुकला है वो किस तरीके की है, बहुत ही संक्षिप्त से जानकारी ले लीजिए तो आपको इतिहास की भी थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी और इसी पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। अब जब हम फिर आज के पेपर्स में जाते हैं तो मित्रों, आज के अखबार में इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको लेकर के एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट लिखा है। इकोनॉमिक टाइम्स में भी एडिटोरियल कमेंट है और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एडिटोरियल कमेंट है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में तो बड़ा खूबसूरत टाइटल भी दिया, हेलो अमरावती। बट ने चिड़े कि अब अमरावती से हर कोई बात करना चाहेगा, हेलो अमरावती, राइट। अब जब हम इन दोनों एडिटोरियल कमेंट को पढ़ते हैं तो जो एक बड़ी खूबसूरत जो बात खासकर इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल में जो आई है वो बहुत ही खूबसूरत है। अब आप देखें कि सिविल सर्विस कैसे एक्सपैंड होता है। इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो अमरावती में अब एक जो राजधानी बनने जा रही है तो स्वाभाविक है कि उसको स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। अभी स्मार्ट सिटी की बात भी हो रही है, एक नया शहर बनेगा, तो नया शहर के नाम पर एक बहुत अच्छी संभावनाएं हैं जब हिंदुस्तान एक बहुत ही मॉडल सिटी एस्टैब्लिश कर सकता है, जैसे सिंगापुर में जैसे देश बन गए हैं, वो तो देश ही है, एक शहर भी है सिंगापुर। तो ऐसी स्थिति में चूंकि एक कैपिटल बनेगा, देखिए एक तो कोई भी शहर बनना और एक राजधानी बनना, राजधानी बहुत बड़ी चीज है, एक राज्य की वो राजधानी बन रही है, तो राजधानी में तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक चाहिए ही। तो एक पॉसिबिलिटी है जब भारत एक मॉडल टाउन के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए दिखा सके कि ये हमारे यहां मॉडल टाउन है। आप देखिए इसमें इन्होंने दोस्तों 5 बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है लेकिन हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी सुविधा के लिहाज से ये पढ़ देता हूं। पहला तो उन्होंने एक पॉइंट दिया है जो मैंने अभी आपको चर्चा की कि एक ऐसा शहर बनाया जा सकता है जो आजादी के बाद का पहला टोटली न्यू कंस्ट्रक्टेड सिटी होगा। छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य ने रायपुर को ही अपनी राजधानी बनाया और वहां का अब एक नया कैपिटल एरिया बन रहा है, राजधानी एरिया। लेकिन पुराने रायपुर को आप किनारे नहीं कर सकते, जैसे दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली राजधानी बनी तो नई दिल्ली बन गई राजधानी के रूप में, तो ऐसा होता है। लेकिन अमरावती के बारे में वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट होगा क्योंकि आप आज आबादी बहुत छोटी सी है और रायपुर तो पहले से ही मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा शहर था, तो उस हिसाब से संभावनाएं बहुत अच्छी है। दूसरी जो इन्होंने बात की है वो ये की है कि इसमें जो जमीन जो एक्वायर की गई है राजधानी क्षेत्र के लिए वो लैंड पूलिंग मेथड के तहत की गई है। लैंड इकट्ठा किया गया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो लैंड पुलिंग का जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के कितना संकट चल रहा है। पुराने कानून के हिसाब से भूमि अधिग्रहण करना मुश्किल हो रहा है, नया अभी जो विधेयक था वो पारित नहीं हो रहा है, और उद्योगों के लिए जमीन चाहिए, सरकार ये कह रही है, तो क्या किया जाए। तो जो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो लैंड एक्वायर करने की जो तकनीक निकाली है उससे पूरा देश सीख सकता है, और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। तीसरा उन्होंने ये बात कही है कि वहां जो लेबर होंगे, वहां जो श्रमिक हैं, जो किराएदार होंगे और जो जमीन देंगे, उसको उन्होंने स्टेक होल्डर बना लिया है। आप कह लीजिए जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे शेयर होल्डर बना लिया है, मतलब उनको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, प्रोवाइड इस तरीके से की जाएंगी कि अगर उनकी जमीन ली गई है तो और राजधानी बन रही है तो इस राजधानी बनने का फायदा भी उन्हें मिलेगा, राजधानी बनने के वो शेयर होल्डर होंगे एक तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें। ये उन्होंने तीसरी बात कही। चौथी बात उन्होंने कही कि इसको जो है यहां कुछ इस तरीके से प्लानिंग की जा सकती है, इस तरह के डिजाइन बनाई जा सकती हैं, टेक्नोलॉजी इंक्लूड किया जा सकता है, एनर्जी एफिशिएंसी की जा सकती है कि दुनिया देखे, कम से कम हिंदुस्तान तो देखे, वहां जाए और सोचे कि नहीं हमें भी अपने शहर में इस तरीके की चीजें करनी है। प्लानिंग की बात हो, डिजाइनिंग की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो और प्रोडक्टिविटी की बात हो, तो ये यहां पर इन सारे सिद्धांतों को जो मॉडर्न चीजें आ गई हैं उनको लागू किया जा सकता है। और फिर उन्होंने अंतिम बात ये कही है कि डेफिनेटली इसके बनने के दौरान जो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उनसे रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही, और ये इस रोजगार के अवसर का फायदा पूरे के पूरे देश को मिलेगा। तो मित्रों, इस तरीके से आप देखिए कि किस तरह से अमरावती में राजधानी बनाने के शिलान्यास के माध्यम से सिविल सर्विस हमारे तैयारी करने के डायमेंशंस को कितना बढ़ा देता है। अदरवाइज आप एक छोटी सी घटना है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, कहीं नोट भी कर लेते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम थोड़े से फंस जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया। राइट दोस्तों, तो यही एक इंपॉर्टेंट खबर थी, और न्यूज में थोड़ी सी ये भी थी, टूरिज्म को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट दो तीन बातें कही हैं जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत की अनंत संभावनाएं, बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत का टूरिज्म इतना वैविध्यपूर्ण है कि बहुत कम देशों को ऐसा सौभाग्य मिलता है, जबकि सच पूछे तो हमारा जो टूरिज्म में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही पुअर है। रोजगार अधिक मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है, और लोअर लेवल के लोगों से लेकर के हायर लेवल के लोगों तक को उसमें रोजगार उपलब्ध होता है। तो इस प्राइम मिनिस्टर ने उस पर ध्यान दिया, और आपको आपने महसूस भी किया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी खासकर जहां भी विदेश में जाते हैं हमेशा वहां के रहने वाले भारतीयों से ये अपील करते हैं कि यहां का एक भारतीय अपने यहां के 5 विदेशियों को भारत में टूरिज्म के लिए भेजे। और इनका अभी से सिद्धांत नहीं है, इनका 92 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब टीवी एशिया पर इनका एक इंटरव्यू आया था जो मैं बाद में सुन रहा था। टीवी एशिया मुझे इसलिए ध्यान आ रहा है क्योंकि जब मैं भी गया था, मैं भी शब्द हटा दूं मैं तो टीवी एशिया में मेरा इंटरव्यू था, तो इसलिए मुझे टीवी एशिया नाम याद रहता है। तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने यही बात, यही अपील की थी कि यहां के रहने वाले एक एक भारतीय 5-5 लोगों को भारत में पर्यटन के लिए भेजें। मित्रों, एक दूसरी बहुत अच्छी, दूसरा बहुत अच्छा आर्टिकल है जनसत्ता का, भारत की अफ्रीकी कूटनीति पर, कि भारत को किस तरीके से अफ्रीका के साथ अपने संबंध बढ़ाने चाहिए। आपको ध्यान होगा 2014 में सीधे सीधे एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो जनरल स्टडीज का आप निकालेंगे मेंस में, तो अफ्रीका में भारत की क्या संभावनाएं हैं, भारत कैसे अफ्रीका से फायदा उठा सकता है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया था। ये आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, हिंदी में ही है, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, लेकिन जनरल स्टडीज की दृष्टि से, इंटरनेशनल रिलेशन और यहां तक इकोनॉमिक सब्जेक्ट की दृष्टि से भी ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो एक बार अफ्रीका के ऊपर आपकी एक अच्छी पकड़ सी बन जाएगी, और अगर आपने एक बार थोड़ी सी बेसिक पकड़ बना ली तो फिर अफ्रीका और भारत के संबंधों को लेकर के यदि कोई प्रश्न पूछा भी जाएगा तो आप कुछ न कुछ लिखने की स्थिति में तो होंगे ही। और दोस्तों, इसी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर है, खासकर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में जो अपना निर्णय लिया। और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये जो आर्टिकल है इनको लिखने वाले रविशंकर प्रसाद जी जो अभी हमारे मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रतिष्ठित वकील भी हैं। तो डेफिनेटली मंत्री होकर के लिखना एक बात है, वो सरकारी दृष्टिकोण को लेकर के लिखते हैं और उस पर हमें विश्वास भी होना चाहिए, और अगर उसके साथ वकालत भी हो तो फिर बात बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली कहीं ना कहीं वकालत से ही जुड़ा हुआ है, कानूनी विषय है। तो इसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसकी बहुत सी चीजें आपको मालूम होंगी जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने कही है वो है कि केवल जुडिशियल की इंडिपेंडेंसी ही सब कुछ नहीं है, जुडिशियल की अकाउंटेबिलिटी भी है और वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की उसकी इंडिपेंडेंसी। लेकिन पूरे इस मामले को समझने के लिए यह आर्टिकल आपको बहुत उपयोगी हो सकता है, आपकी बहुत मदद कर सकता है, तो आप इसे पढ़ें। और इसके अतिरिक्त मित्रों दो आर्टिकल और हैं, एक इकोनॉमिक टाइम्स का, एक इंडियन एक्सप्रेस का, ये मैं नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग इसे देख लेंगे। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। दोस्तों मेरे पास तीन स्टूडेंट्स के ईमेल आए हैं जो अभी अक्टूबर की क्लास में भोपाल आने वाले हैं, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं, तो उस एरिया से जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वे इन स्टूडेंट से चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक स्टूडेंट है राजकुमार दीक्षित जो दिल्ली से आ रहे हैं, राजकुमार दीक्षित का मोबाइल नंबर है 9717957003। दूसरे स्टूडेंट है अजय कुमार पटना से आ रहे हैं, अजय कुमार का मोबाइल नंबर है 9052362633। और तीसरे स्टूडेंट हैं विवेक जो नांदेड़ महाराष्ट्र से आ रहे हैं, विवेक का मोबाइल नंबर है 8605556659। तो मित्रों अब मैं उन सब दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ईमेल लिखे हैं। और इनमें से कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं, वो हैं रवि हैं भोपाल से, विश्ना राम माली मोकलपुर राजस्थान से, अंकुश शिमला से, पंकज मिश्रा दिल्ली से, मनमत दीक्षित दिल्ली से, हनुमान बाड़मेर राजस्थान से, प्रवेश मलिक आप नेवी से हैं, प्रियंका लिखार नागपुर से हैं, अजय कुमार द्विवेदी नई दिल्ली से, प्रतीक ओझा विशन नगर गुजरात से, और अंकित राजा बेगूसराय बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वो ये कि इस बीच डेली ऑडियो नहीं आएगा, लेकिन आप मेल पर कुछ भी अपने ओपिनियन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, आप बिल्कुल दिए, क्योंकि ईमेल मैं डेली देखूंगा ही और उसमें से जो महत्वपूर्ण होंगे जब डेली ऑडियो शुरू होगा तो उस समय मैं उनके जवाब दूंगा। इसलिए डेली ऑडियो के न आने का मतलब ये नहीं है कि आप ईमेल लिखना भी बंद कर दें। और अंत में दोस्तों प्रवेश मलिक जो नेवी में हैं उन्होंने एक मेल भेजा है कि किस तरह से उनके ऑफिस में कोई एक ब्लाइंड टेलीफोन ऑपरेटर है, उनसे वो बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। बिल्कुल प्रेरित होना ही चाहिए प्रवेश जी, क्योंकि आप कल्पना करके देखिए कि जिनकी आंखें नहीं होती उनके लिए दुनिया अगर चाहिए तो दुनिया कहे कि आपको क्या चाहिए तो कहेंगे मुझे आंखें चाहिए। अगर ईश्वर उनके सामने आ जाए और बोले तुम वरदान मांगो तो क्या मांगेंगे, वो अपनी आंखें ही मांगेंगे। हनुमान ने बाड़मेर से लिखा है कि अपना काम करने को लेकर के उन्हें कुछ समस्या बताई है, और डेफिनेटली मित्रों मैं तो देखिए इस ओपिनियन का हूं कि काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, अगर हम किसी काम को अच्छे से करते हैं तो वो काम बड़ा हो जाता है, और अगर बड़े से बड़े काम को भी छोटे तरीके से करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। इसलिए मैं काम को कभी भी छोटा बड़ा नहीं मानता, और डेफिनेटली अपना काम करना तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, सबसे अधिक चैलेंज की बात होती है, और यदि किसी को ऐसा अवसर मिलता है तो उन्हें इस अवसर को लपक लेने से चूकना नहीं चाहिए, बशर्ते कि वो अपने को इसमें ऐसा पा रहे हों कि वो ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि अपना काम करने के अपने अलग से अलग तरीके के चैलेंजेस भी होते हैं। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं इस आज के ऑडियो गाइडेंस को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, और साथ ही एक लंबी अनुपस्थिति की अनुमति देने की भी इजाजत चाहूंगा। मुझे अफसोस है और मन सच पूछे तो थोड़ा सा भारी भी हो रहा है कि अब आने वाले लगभग 17 दिनों तक मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, समय कभी कभी ऐसा आता है। मैं अब अपने सामने आए हुए स्टूडेंट्स से जीवंत तरीके से मुखातिब होऊंगा, आप सबके बिहाफ पर उन लोगों से बातें करूंगा, और फिर जब ये डेली ऑडियो शुरू होगा तब फिर हम पिछली अपनी जो कमी है उसे पूरा करेंगे। तो मित्रों, इजाजत चाहूंगा, विदा चाहूंगा 17 दिनों के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इस बीच आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जो उद्देश्य आपने बनाया है उस उद्देश्य के प्रति कमिटेड होकर के डटे रहें। afeis.com को विजिट करते रहें, क्योंकि नॉलेज सेंटर पर आपको अखबारों की क्लिपिंग्स और योजना और कुरुक्षेत्र के जो आर्टिकल्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो मित्रों, विदा, नमस्कार, धन्यवाद।